बाद से बहुत से लोग व्रत समाप्त करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा तक व्रत करते हैं। एकादशी में व्रत समाप्त होने पर भी 5 दिन भीष्मक पर्व पड़ता है,
भीष्म पंचक।
इसलिए क्यों हलो बंद है गलो खाने है नहीं खाने ये खाने दे ये रखो क्या होता है कौन करता है वहाँ के तो ये द्वादशी से द्वादशी तक कुछ लोग व्रत करते हैं, कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो अभी पूर्णिमा तक जरूर सबको व्रत करना चाहिए। ये राधा जी का ये व्रत है, कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी, इसमें थोड़ा सा भी यदि कोई नियम पूर्वक कोई व्रत करता है तो राधा जी प्रसन्न हो जाने से कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते। अभी कीर्तन में एकादशी का इन लोगों ने गाया, यदि एकादशी व्रत न रहे और सब व्रत भी करे तो उसका कोई फल नहीं। सब व्रत मिलकर के कोटि कोटि मिलकर के भी एकादशी के एक थोड़े से अंश के बराबर पाषण के बराबर भी इनका फल नहीं होता। इसलिए ब्रजवासी लोग और हमारे जितने वैष्णव लोग हैं एकादशी व्रत जरूर करते हैं, इसलिए इस महीने में जरूर करना चाहिए। यदि हो सके तो प्रतिदिन भागवत भी सुनना चाहिए, भगवान की लीला कथाएं सुननी चाहिए। अभी सभी लोग बाहर से आकर के कहां कहां से अमेरिका इंग्लैंड और बंगाल और बिहार कहां कहां से आकर के इस महीने में परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं, किंतु यहां के लोग बहुत कम करते हैं। वो देखते हैं कि घर की और विश्व के लोग कहां कहां से आते हैं, कितना कष्ट करके आते हैं, पैदल चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम समझते हैं कि वो लोग इसकी महिमा अधिक जानते हैं, आप लोगों को तो देवी की तरफ में पूजा करेंगे, किंतु पूजा उनकी भी होनी चाहिए, उन्हीं की होनी चाहिए। आप लोग समझते हैं जहाँ घर में है कि आप ब्रज में जाना इधर करना उधर करना, आप लोगों को फुर्सत नहीं है और उन लोगों को सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पर आए। ब्रज की महिमा हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रखते हैं और ब्रजमंडल की परिक्रमा भी प्रति वर्ष करते हैं। आप लोगों ने एक बार हमने कर लिया था तो एक बार आप लोगों ने खा लिया था, रोज रोज क्यों खाती है, रोज रोज क्यों पानी पीती है खाती है? इसलिए कभी कभी समय मिले ब्रजमंडल की परिक्रमा भी इसमें करना जरूरी, क्यों भागवत तो पुस्तक में लिखी है भागवत, और यदि परिक्रमा करेंगे अपने आप, गिरिराज में भागवत लिखा हुआ है, जमुना जी में भागवत लिखा है, नंदगांव बरसाना ये सब स्थान में भागवत अपने आप लिखा हुआ है, वो अपने आप जाने से ही लीला की स्फूर्ति हो जाए। हम लोग अभी गए थे सब बारहों वनों में और कितने उपवनों में, वहां वहां की लीला स्थलियों का हम लोगों ने वर्णन किया। आज जो बाकी रह गया है वो सबका हम वर्णन करेंगे। देखो एक छोटी सा स्थान है अजनौ, अजनौ अभी हम जहाँ गए थे उस दिन हमने छोड़ दिया था शेरगढ़ में, नहीं कहाँ छोड़ा था, कोसी में हम लोगों ने छोड़ दिया, कोसी से यहाँ चले आए। कोसी के बाद में अजनौ के एक स्थान पड़ता है, अजनौ माने क्या, साधारण आदमी उस गांव का आदमी नहीं जानता है यह अजनौ क्या चीज है, किंतु कृष्ण लीला के नाम पर इसका नाम पड़ा आंजन से अजनौ। आंजन, अंजन होता है ना काजल होता है, उसको आंजन कहते हैं। किसी दिन राधा और कृष्ण जी बैठे हैं और राधा जी के देखा जी खूब श्रृंगार में सब ठीक है किंतु आंख में काजल नहीं है, तो कृष्ण ने मंगाया काजल, आंजन मंगाया और अपने हाथों से काजल कर ले, काजल किया ने? किंतु यहां तक बढ़ा करके यहां तक लेकर के चले काजल राधा जी से कहते हैं देखो तू देखने लगी कहीं तूने ये क्या कर, तो उसने फिर से बिगाड़ करके और फिर से काटना तो वो यहाँ तक चला आया, फिर उसको मिटाया, फिर करने लगे। बार बार मिटा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। राधा जी के हृदय में भी, उनके हृदय में भी कुछ सिहरन सी आई। ये सब लीलाएं वहां पर हुई जहां पर आयोजन किया, और बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। वो स्थान का नाम है, छोटी छोटी बात आप लोगों ने शायद सुना होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे तो फिर ये सुनेंगे कैसे? इसलिए ब्रजमंडल ये कार्तिक महीने में हम लोग घर बैठे नहीं रहे, ब्रजमंडल में स्थानों स्थानों में हम परिक्रमा करते हैं। और वहां पर लिखा हुआ आपने, आप उन स्थानों में भागवत लिखा है। अभी चीर घाट गए थे, वहां की कथाएं हमने सुनाई, और सब जगहों में गए थे। अभी हमने जहां जहां हम लोग गए थे उसमें थोड़ा सा स्थान बाकी रह गया, तो उसका अभी हम बतलाएंगे कौन कौन स्थान में हम नहीं गए, कौन कौन स्थान में गए, और उसका वर्णन हम संक्षेप में यहाँ पर अभी बतलाएंगे। उसके पहले एक बात बतला देना चाहता हूँ कि हम लोग की परिक्रमा करीब करीब हो चुकी है, किंतु अभी बेलबन नहीं गए, और वृंदावन में नहीं गए, भातरौल में नहीं गए, और भी कुछ स्थान में नहीं गए। उसको अभी गोवर्धन में हम गए हैं, पूजा भी की है, परिक्रमा नहीं की है। तो उसकी हम परिक्रमा 16 तारीख को करेंगे,
5 बजे,
और उसी दिन वहीं पर अन्नकूट होगा। जो भी जाएगा वो हम लोगों के साथ में प्रसाद पाएगा, किंतु किराया भाड़ा देना पड़ेगा अपना। किराया हम नहीं देंगे, किराया आप लोग को अपना देना पड़ेगा। तो जो जो जाना चाहते हैं हमारे साथ में, वहाँ के एक एक स्थान में हम जाएंगे, कहाँ पर बाजन शिला है, कहाँ पर वो गोपाल जी निकले, कहाँ पर वो गोविंद कुंड में क्या लीला हुई, धान घाटी में क्या लीला हुई,
वंशी
गंगा में क्या है, वहीं पर गोपी घाट है, उसमें गोपियों को जहाँ पर पार करते थे कृष्ण, इसके बाद में वो गौर कुंड है, शंकरसन कुंड है, वहाँ की सब लीलाएं हैं। वहां से आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे वहाँ नवल कुंड, कृष्ण जी का नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है, पासी में सुरभि कुंड है, सुरभि में गजराज कुंड है, भैरावत कुंड है, और फिर गोवर्धन अन्नकूट का स्थान है। वहां से आगे बढ़ करके फिर गोवर्धन में आएंगे,
चकलेश्वर,
चकलेश्वर महादेव में जाएंगे। क्यों नाम पड़ा चकलेश्वर? चकला बेली नहीं,
चकलेश्वर,
चकलेश्वर माने चक्रेश्वर से ब्रजवासी लोग चकलेश्वर का है, चक्रेश्वर, चक्रेश्वर से
रोटी बनते ना, चकला चकला करते चले,
उस स्थान की चक्र से रक्षा करते हैं। उद्धव कुंड में जाएंगे, गोपियों से उनकी बातें हुई थी, वहां पर जाएंगे, और फिर वहां से राधा कुंड में कितने स्थान है, उनकी जीवा है वहां पर, उनका कूप है, वेणु कूप है, गोपी कूप है। महाप्रभु जी ने राधा कुंड को प्रकाश किया था, रूप गोस्वामी इत्यादि ने कहा भजन किया, रघुनाथ ने भजन किया था, और उसके बाद में कुंड कैसे प्रकट हुआ, राधा जी का कुंड का महिमा अधिक है कृष्ण के कुंड से, उसका पानी सफेद, उसका पानी काला, इस तरह से इन सब स्थानों कुसुम सरोवर में जाए। तो जो यदि जाना चाहता है तो पहले से हमको बतला देना है, तो उस दिन फिर हो जाती है, हम लोग बस से जाएंगे यहाँ, और वहां से सवेरे में 6 बजे से हम परिक्रमा आरम्भ करेंगे। इसलिए हमको नाम दिखवा देना, जिससे कि हम एक बस तो हमारी जाती है, उसमें हमारे ब्रह्मचारी ही भर जाते हैं, या 2-4 लोग उसमें आ सकते हैं, और यदि कोई जाना चाहेगा हमको पहले बतला देंगे, नहीं तो फिर में हम अधिक आदमी को नहीं पूछ सकते। और इसके बाद में यहाँ की ये सब जहाँ जहाँ हम लोग आज नहीं गए थे, कल नहीं गए थे, उन सब का स्थान और वहाँ की महिमा मैं बहुत संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। अब आप जाना चाहें तो जा सकते। जयकारा दीजिए।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज के आनंद की जय।
नहीं करना चाहिए,
क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ गुजरात का आनंद निकाला
एक बात और है, हमारे यहाँ के जो आते हैं अन्नकूट के लिए, यहाँ ले आएंगी और यहाँ ठाकुर जी का आप लोग लगेगा, हम लोगों के यहाँ जो बनेगा बनेगा 365 तरह की चीजें ठाकुर जी को हम भोग देंगे, केवल 56 प्रकार की नहीं।
जो
महाराजा छत्रपति नंदेल कुमार महाराजा यहाँ के ब्रज के हैं, नंदनंदन यहाँ के महाराजा हैं, जाकर के कह दो। तो वो जाकर के सब कहने लगा। गोपियों ने सुना जी कहा था महाराजा आ गया, हम तो जानते थे जब ब्रज की महारानी श्रीमती राधिका जी। उन्होंने सुन करके, और एक गांव है उमराव, उसी इसीलिए उनका उमराव नाम पड़ा। उमराव माने होता है राजा, बड़े बड़े धनी लोगों को उमराव कहते हैं। तो उन्होंने राधिका जी को सिंहासन पर बैठा करके और राजा उनको वृंदावनेश्वरी घोषित कर दी और कह दिया जी ये जो घोषणा कर रहा है उसको पकड़ लाओ। मधुमंगल को पकड़ दिया और उसको पुष्प से डोरी बनाई गई, उसमें रस्सी नहीं रही, केवल पुष्प से पुष्पों की लड़ी बना करके उसको रस्सी बनाया और मधुमंगल को उसमें बांध दिया और पुष्प की छड़ी लेकर के दो चार छड़ी उनको लगा दिया उसमें, और वो आम आम का करके रोना लगा। हमको छोड़ दो, कहे नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं, कहे मुझे भूख लगी है हमको मत छोड़ो किंतु हमको लड्डू खिलाओ। अंत में उन लोगों ने हंस करके उसको ब्राह्मण का जब पेटू ब्राह्मण है इसको दे दो, तो उसको एक दो लड्डू दे दिया। वो बड़ा प्रसन्न होकर के लौट गया, कृष्ण के कहा, कृष्ण से लौट करके कहा भाई आपको तो मेरी प्राण बच गई, इसी प्रकार से तुम राजा होने योग्य नहीं हो, तुम्हारे रहते हुए और हमको पकड़ लिया गोपियों ने और उनके चरणों में राधा जी के चरणों में हमें गिरा दिया, तो तुमको लज्जा आनी चाहिए, हमको तो बड़ी लज्जा आई, तुमको भी अलग लज्जा आनी चाहिए। तो एक बात करो, तुमसे राजापन का काम नहीं होगा, तुम हमारे साथ में आओ और आ करके वो जो उमराव बनी है उसके चरणों में तुम नतमस्तक हो। तो कृष्ण देखा जी से जरा देखें तो कैसे उमराएं बनी हैं, उनको देखने के लिए उनको कंठा हुई और उनका हाथ पकड़ करके वहां पर आए। वहां पर उनका वो जरूर देखा, कभी ऐसा रूप देखा नहीं, अपूर्व रूप देख करके और वहां पर पहुंचे। गोपियों ने जब उनके चरण में गिरने जा रहे थे तो गोपियों ने ललिता विशाखा जी ने उनको पकड़ करके और राधा जी के बाएं में उनको बैठा दिया। बैठा देने के बाद में दोनों का अपूर्व रूप हुआ उनको देख करके। उस दिन से राधा जी को उन्होंने उमराव स्वीकार किया और ये तुम्हारा ही राज्य ये स्वीकार किया, इसलिए उमराव गाँव वहीं से होकर के हमारी गाड़ी गई। उसी उमराव गांव में एक किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड माने राधा जी का स्थान है, तो किशोरी जी के नाम पर वो कुंड बनाया जो रास्ते में पड़ता है, जिसको दाहिने तरफ में हम छोड़ करके गए। तो वो किशोरी कुंड के समीप ही में हमारे लोकनाथ गोस्वामी जी भजन करते, भजन करते करते बहुत दिनों के बाद में वो खैरा नामक ग्राम में यहाँ पर किशोरी कुंड में उमराव गांव में छत्रबल में और वृंदावन के और स्थानों में खैरा में वो भजन करते थे। अब बड़े त्याग के रूप में बैराग रघुनाथ गोस्वामी जैसे तो उनको वहां पर एक तालाब में सफाई हो रही थी, उसमें से एक विग्रह राधा विनोद जी उसमें से निकले। लोगों ने उनको बुला करके दिखाया, उन्होंने कहा ये यही हमारे आराध्य देव हैं, तब से पूजा करने लगे। अंत में जब वो श्लोक को छोड़ने लगे, कृष्ण की अप्रकट लीला में जब प्रवेश करने लगे, तो वहाँ गोकुलानंद जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्थान है, भजन स्थली, वहीं पर वो उस स्थान वहाँ पर रख गए। उस समय रूप गोस्वामी इत्यादि ने वहीं पर रखवाया और वहीं पर विनोद बिहारी जी उनके थे, गोकुलानंद में अभी भी निकला थे, किंतु वो अब चले गए हैं वहाँ जयपुर में। तो अभी कोई कोई दिखलाते हैं यहाँ पर राधा दामोदर में भी उनको दिखलाते हैं, किंतु असल में वो चले गए हैं जयपुर, उनके विजय विग्रह यहाँ पर है। तो ये है उमराव गांव। तो उमराव गांव में ही राधिका जी की सरकार बनी थी, और कोतवाल बनी कौन, ललिता बनी कोतवाल, और
पकड़े गए।
हाँ, और पकड़े गए मुरारी, मुरारी पकड़े, मुरारी को पकड़ लिया और उनका विचार किया, उनका भी वकील आया, इनका भी, उनका वकील कौन, सीताम मधुमंगल इत्यादि ये सब उनके वकील, और श्रीमती राधिका इसके, ललिता इत्यादि के, और ये मुकदमा दायर कौन किया है, विशाखा इत्यादि मिले ये सब, ये ललिता, ललिता जी तो कोतवाल थी, और गोपियों ने मिलकर के वो केस दायर किया, और ये कोतवाल बन करके पकड़ने के लिए समन लेकर के गई ललिता जी, और उनको पकड़ ले आई, और वहां पर बहस छिड़ी, बहस छिड़ने के बाद में फिर साक्षी के अभाव में उनको बरी कर दिया, बरी कर दिया, किंतु साक्षी के अभाव, मामला दायर सब ठीक था किंतु साक्षी नहीं मिली, इसलिए उनको
साक्षी नहीं,
बस केवल दस्तखत करा दिया उनसे, जब अब ऐसा नहीं करेंगे, बस इतना ही तक हुआ। तो ये रहा उमर, उमा का क्या उमरा, वहां पर जब राधिका जी को बैठ के सामने ने उनके बाएं तरफ में बैठा दिया, तो इसमें लिखा है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, उसमें सब लीलाओं की परिपाटी का वर्णन है, उसमें लिखा है राधिकार प्रति मधु कहे बार बार, मधु माने मधुमंगला, वहां पर बैठाया, बैठा करके कहने लगा बार बार, अबे कृष्ण लेह राज्य करो अधिकार, राधिका जी को कह रहे हैं, राधिकार प्रति मधुमंगल कह रहे हैं, देखो अब मैंने कृष्ण को यहाँ पर ला करके तुम्हारे पास में बैठा दिया, अब ये तुम्हारे, ये तुम्हारा राज्य है, कौन कृष्ण, अब इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, अधिकार कृष्ण दिवे एक आलिंगन रत्न से तुम्हार भेदता फई दे, अब इनका तुम राज्य अंगीकार करो, अब ये राजा नहीं कृष्ण, राजा तो अब तुम हो गई, और ये तुमको इसके बदले में जो देंगे इसको तुम कर के रूप में देंगे, उसको तुम अंगीकार करो, और भी बहुत सी बातें उसमें लिखी हैं। इसके बाद में नरिशेमरी एक स्थान है, नरिशेमरी, आजकल देवी जी का वहाँ पर पूजन होता है, राधिका जी का, देवी वहाँ की राधिका है किंतु पूजन करने लगे हैं सब देवी की, नरिशेमरी मैंने न को पहले ह को न कहते थे, बंगला में है ना, जैसे
ओपिनीति अभिश्रुति इसमें चेंज होता
है,
ओपिनीति अभिश्रुति अश्रुति वस्तु के पांच प्रकार का है उसमें चेंज होता है। अच्छा,
तो इसमें हरी था सब, हरी शब्द था, तो हरी से नरी हो गया, शेमरी श्यामली, हरी श्यामली बने, इसलिए हरी से नरी हो गया और श्यामली से हो गया शेमरी। तो ये अब ये क्या हुआ, पहले का नाम हरी श्यामली, हरी श्यामली बने, राधा जी को मान हुआ, उनका मान किसी प्रकार से उतरता नहीं, तो श्याम जी श्यामा सखी बन करके वीणा दिया और वीणा वादन करते हुए उनके स्थान में पहुंचे, इतना सुंदर राग रागिनी से गाया गली में गुजरते हुए, राधा जी ने कहा जी उसे बुलाओ, तो एक तो पहले से वो जरा खिन्न है कृष्ण के विरह में, उन्होंने बुलाया वो आ गई, सखियों का समाज बैठा था, उन्होंने कहा जी सखी तुम बड़ा सुंदर गाती है, ये पहली बार तुमको इस ब्रज में देखा गया, तुम कहाँ रहती है, तो अपना नाम बतलाया, अपना नाम श्याम श्यामा सखी बतलाया, तो वहां पर मैंने कहा अच्छा तुम एक गान करो, तो इतने सुंदर रूप में राग रागनी से उन्होंने गान किया, राधा जी प्रसन्न होकर के अपने गले का हार उनको पहना ले, जो ही पहनाया त्यों ही कृष्ण का अंग सिहारने से वो समझ गए अरे ये दूसरा कोई नहीं है, ये इसलिए उस वो प्रसन्न हो गई, जब माला देने लगी तो कृष्ण ने माला लिया नहीं, वो हार नहीं लिया, उन्होंने क्या कहा भाई इस हाथ के लिए मैं नहीं आया, मैं इतना राग रागनी से तुमको प्रसन्न नहीं किया, मैंने तुमको प्रसन्न किया तुम्हारा मान रूपी रत्न चिंता मणि है उसको लेने के लिए मैंने किया, तुम अपनी मान रूपी चिंता रत्न हमको प्रदान कर। बस वो मुस्कुरा दिया, बस उनका मान सब खत्म हो गया। इसलिए ये नरी शेमरी का नरी शेमरी में शेमरी जो है ये श्यामला सखी का स्थान है, यहीं पर उनका जन्म, उनका माता पिता इत्यादि सब, ये श्यामली के नाम पर शेमरी हुआ। इसलिए श्यामला सखी जी कौन है, राधा जी की सूर्य पक्ष की सखी है। श्रीमद् भागवत में इनके सब क्रियाकलापों का, कृष्ण के प्रति अनुराग का ये सब वर्णन है। वहीं पर पासी में एक धन सिंह है नाम का गांव है छोटा सा। धन सिंह माने क्या, धनिष्ठा है ना, धनिष्ठा का धन सिंह हो गया। ब्रज में ऐसे ही जितने भी नाम हैं गाँव के इधर उधर बिगड़ टिगड़ करके, किंतु फिर अनुसंधान करने से उनका असल नाम का पता चल जाता है। इसलिए धनिष्ठा से हो गया, धन सिंह से हो गया ये धनिष्ठा, धनिष्ठा से उनका। धनिष्ठा कौन है, जसोमती आज्ञा पाए धनिष्ठा श्री कृष्ण प्रसाद मुझे राधा है। धनिष्ठा जी कृष्ण पक्षीय सखी है, वो सखी है और कृष्ण की जसोदा माँ की आज्ञा से सब सेवा करते हैं। कृष्ण प्रसाद पा लेने पर जसोदा जी धनिष्ठा के माध्यम से कृष्ण का प्रसाद राधा जी के पास में भेजते हैं, और भी घर का जितना काम है ये धनिष्ठा जी करती हैं जसोदा जी के घर।
जसोदा भवन में
नित्य रहती हैं, कृष्ण को दर्शन कृष्ण की सेवा जसोदा जी में आती, और भी सखियां जिसमें की ये प्रधान है। पासी में एक रणबाड़ी है,
रणगढ़ी
रणबाड़ी, रणबाड़ी माने कंतर परण काम कारण, मैंने प्रेम का चुनाई वहां पर हुई थी, दोनों में इसके संबंध में युद्ध हुआ, इसलिए पहले से इसका नाम है रणबाड़ी। राधा और कृष्ण के विलास का स्थान है इसलिए इसका नाम है रणबाड़ी, किंतु पीछे से वहीं पर एक कोई कृष्णदास नाम के एक ब्रह्म ये रहते थे भक्त लोग भक्त, और यहाँ के राधा कुंड इत्यादि भक्तों के साथ में इनका बहुत ही मेल था, और ये सिद्ध माने जाते थे। कुछ दिन के बाद ना जाने क्यों इनके हृदय में इच्छा हुई, मैं द्वारका जरा घूमा, उनकी इच्छा होने पर रात को स्वप्न हुआ, मानो श्रीमती राधिका जी कह रही हैं अरे तू वृंदावन को छोड़कर के ब्रज को छोड़कर के मत जाओ। तो उन्होंने सोचा जी कोई बात नहीं, स्वप्न ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्वप्न हो गया होगा। इतने में वहीं का कोई ब्राह्मण गांव का आदमी आया, बोला जैसे द्वारका चलेंगे, मैं द्वारका जा रहा हूँ। अरे ना भाई हम नहीं जाएंगे, हमारा एक खराब स्वप्न हो गया, अब मैं नहीं जाऊँ। इसने कहा देखो तुमको खर्चा वर्चा नहीं देना पड़ेगा, रुपया पैसा तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, तुम हमारे साथ में चलो। तो उनको फिर से उत्साह आ गया और स्वप्न को झूठा मान लिया और वो चल गए। वहां जाकर के द्वारका इत्यादि में रह करके उनको बड़ा अच्छा लगा, और वहां पर जाने पर ताप देते हैं, छाप रहता है क्या, वो उसमें वो चतुर्भुज का कोई नारायण का या किस चीज का छाप होता है, वो चक्र का छाप देते हैं। जलती हुई पीतल की या तांबे की कोई चीज होती है गर्म करके और छाप देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग पहले डरते थे, हम लोग भी गए थे तो वहां पर गुरु जी के साथ में गए थे 1952-51 में हम लोग गए थे, तो वहां पर सब छाप देते थे, सबको छाप देंगे ही, हम लोग नहीं लिया, हम लोग बच गए जितने सन्यासी और ब्रह्मचारी और बाकी सब लोगों को छाप दिया। उस समय में एक लोटा पानी का दाम 1 रुपया, बड़ा कुआं किंतु पानी थोड़ा सा, पानी उधर नहीं मिलता है, तो उस समय में छाप देते थे, तो इसको भी छाप दे दिया, तो इसने छाप ले लिया। कुछ दिनों के बाद में फिर मन नहीं लगा तो वहां से लौट करके आया उसी जगह में भजन के स्थल पर। अब जो लीला स्मरण इत्यादि था, जो मन लगना था, भजन में रुचि नाम में रुचि, ये सब खत्म हो गया। किसी तरह से मन नहीं लगता। अपने मित्र के पास में गए, बाबा जी के पास में राधा कुंड, उन्होंने उनको देख करके पहले से ही मुख मोड़ लिया, उनसे बातचीत नहीं की। कहा जा रही इस पर राधिका जी अप्रसन्न है, यदि से बातचीत करेंगे तो ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। गुरु वैष्णव इष्ट देव हमारे किसी से बातचीत नहीं करते, हम भी बातचीत नहीं करें, जो उनके प्रिय है उन्हीं से हमारा भी संबंध रहेगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे बातचीत नहीं किया, बातचीत नहीं आए तब वो फिर लौट करके आए, बड़ा विरह में दुख हुआ, उससे आग निकली और रात में अपने कुटी में ही जल करके भस्म हो गए। दूसरे दिन सब लोगों को पता चला, अरे भाई वो बाबा जी खोल रही है, दरवाजा नहीं खोल रहा, दरवाजा खोला देखा वो जी केवल वहां पर भस्म पड़ा। तो उनका एक कोई गुरु भाई था, एक लकड़ी जो शीतल हो गई थी वो भस्म उसमें दिया तो वो भी जल उठी। इसके बाद में रणबाड़ी प्रति वर्ष जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी उसी दिन वहां पर उत्सव होता है, आज भी होता है। यह है निष्ठा का प्रश्न। राधा कृष्ण का भजन करेंगे और द्वारका भी दो अखबार खाएंगे, बद्रीनारायण में जाएंगे खाएंगे, निष्ठा में। इसलिए एक निष्ठा के साथ में इनका भजन करने से तब जाकर के सिद्धि होगी। इसलिए वो रणबाड़ी स्थित स्थान दोनों तरफ से वो प्रसिद्ध है। खैरो, खैरो मैंने क्या, कृष्ण का खैर है तो कुशल है तो खैरो, और क्या खायो रे, खैरो मैंने क्या, बसासुर को खदेड़ा कृष्ण ने, नहीं बसासुर, बसासुर वहीं से खदेड़ा, खैरो ग्राम से, खैरो माने खदेड़ा, खदेड़ा से वो खैरो हो गया, खदेड़ा बन और फिर कृष्ण ने वहां से खदेड़ा, इसलिए वो खैरो। अथवा खैर के पेड़ पर मरा था किसी असुर को, इसलिए वो खैरो। अथवा और भी कारण हो सकते हैं खैरो बन, खैरो बन माने कृष्ण का वहीं पर पान और सुपारी और उसमें खैर दे करके उनको निवेदन किया जाता था, इसलिए
को तो कपित पेड़ में मारा था, कपित पेड़ से,
कपित को ही शायद खैरो कहते हैं ना क्या। काशी में बकथरा है ग्राम, हम लोग छोड़ करके बाएं तरफ में आए, बकथरा,
बकथरा,
बकथरा माने बकासुर का वध का स्थान, वही बकासुर को उन्होंने मारा। वहीं पर कामर है, कामर एक गांव, उसको भी छोड़ करके आए।
कामर में क्या हुआ,
कामर माने होता है वो, यहाँ पर कामर लेकर के चलते हैं लटका करके, उसके दोनों तरफ में कुछ रख दिया और होता है कामर ही एक, तो उसी को कहते हैं बांध। कामर सूरदास ने लिखा इसके संबंध में, मैया मेरी कामर चोर लई, मैया मोरी कामर चोर लई, मैया से कह रहे हैं ये जसोदा मैया से रोते हुए, हमारी कामर को किसी ने चुरा लिया, कौन चुराएगा, ये गोपियां ही चुराती हैं, ये कोई ना कोई हमारी कामर को चुरा लिया है। मैं पन जात चरामन गैया, मैं ब्रज में गैया चराने जाती हूँ, कामर को यहाँ पर रख दिया, सुनी देख लई, देखा जो कोई रक्षा करने वाला नहीं है तो वो कामर मेरी उठा करके चोरी लेकर के चली गई। एक कहे कान्हा तेरी कामर जमुना जात बही, अरे हमने देखा है वो कहा कान्हा, अरे जमुना में बहती हुई मैंने देखा, जा करके ले आओ,
इसने कहा,
गोपी ने ताली बजाते हुए कृष्ण से कहा, उस समय बच्चे आए थे छोटे से। और दूसरी क्या कहती है, एक कहे कान्हा तेरी कामर सुरभि खाए गई, सुरभि चबा गई तुम्हारी कामर, और एक कहे नाचू मेरे आगे लय देहु नई, अरे तुम इसके लिए छोटी सी कमरिया के लिए क्यों रोता है? मैं तुम्हें नई कामर दे देता हूँ, थोड़ा सा नाचो तो करके। सूरदास के, सूरदास जसमती के आगे अश्वन धार बही, आंखों से आंसू की धार कामर के लिए बह रही है और मैया से उलाहना दे रहे हैं, ये हमको ऐसे तंग करती है। वो है कामर। कामर का एक और तात्पर्य है गुड़, काम से काम। गोपियों के काम को बढ़ाने वाले, कृष्ण को काम को, प्रेम को बढ़ाने वाले नाम से इसका नाम हो गया काम। बासी में हम लोग कल गए तो पीछे पीछ की तरफ में हमने छोड़ दिया किसको? पायग्राम को। पायग्राम पड़ता है, जब कोसी से हम आते हैं छतिया शेरगढ़ तो बीच में पड़ता है। पायगांव माने क्या होता है? पाय माने दूध, पाय माने पानी भी होता है क्योंकि दूध उसका होता है। लोगों को, बच्चों को भूख लगती है तो कृष्ण बैठ जाते हैं, गाय का दूध चुचुआने लगता है, अपने भी खाते हैं, बच्चों को भी धारोष्ण सबको खिलाते हैं, इसलिए उसका नाम है पायगांव। रामघाट तो हम लोग गए, बिहार बंद हम लोग गए, फांदी बट हम लोग गए, कजरौटा में हम लोग गए थे कसरत वाला, गोपी घाट तपोवन में हम लोग गए, नंद घाट में हम लोग नहीं गए। पासी में ये नंद घाट पड़ता है, भद्रवन के पास में, समीप में जमुना के किनारे, उस पार, इस पार में और उस पार में भद्रवन है, बसवन इधर है और भांडीर बट उधर है, यमाट बन उधर है और इस तरफ में बस बन है। तो वैसे ही नंद घाट कहाँ है? भय गांव और नंद घाट की एक जगह है। हम लोग पिछले एक दो बार पहले गए थे, बस में भी गए थे, एक बार हम लोग उधर से भी गए थे, दो बार हम तीन बार गए हैं। तो ये नंद घाट है या भय गांव कौन है? नंद वहां को भय लग गया, उनको वरुण उठा करके ले गए। द्वादशी के दिन में खूब सवेरे वो जमुना में स्नान कर रहे थे और कुबेर के दूत उनको पकड़ करके ले गए। पीछे से कृष्ण को पता चला तो कृष्ण वहां पर गए, उनको देख करके कुबेर, उनकी बहुत सी सेवाएं की, रत्न हार इत्यादि सब दिया, नंद बाबा को लेकर के उनको दे दिया। नंद बाबा ने देखा जिसे का इतना विशाल वैभव और कृष्ण के चरणों में सब कुछ रख दिया और इसका स्तुति कर रहा है, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। जब वहां से लौट करके आए तो ब्रजवासियों से कहा, तो ब्रजवासियों ने कहा कि हमको भी उस लोक को दिखलाओ, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो पीछे से ब्रह्मघाट में उनको दिखलाया। तो उसको कहते हैं भय गांव, भय माने भय से गांव, और नंद घाट उसी को कहते हैं जहां पर स्नान करते थे नंद, वहां पर कुछ दिन रहे थे। पासी में जीव गोस्वामी का स्थान है, जब रूप गोस्वामी ने उनको शासन किया और कहा जे तुम्हारा भी क्रोध नहीं गया है, भय गांव है, तो वहां पर ये चले गए और वहीं पर भय गांव के पास ही में जहां क्रोकोडाइल रहते हैं,
मगर
वहीं पर किनारे में वो गहर बना लेते हैं, गुफा बना लेते हैं पानी के भीतर और उसी में रहते हैं, कभी ऊपर में आते हैं और कभी भीतर में रहते हैं। तो वहां पर मगर सब रहते थे, उनकी माद में रहने लगे, माद बने गड्ढे में रहने लगे और कुछ नहीं खाते, दिन रात रोते, उसमें सूखकर के कांटे हो गए, शरीर अस्वस्थ हो गया। सनातन गोस्वामी गए, गांव वालों ने उनकी बच्चे की बड़ी तारीफ की, आप क्या भजन करते हैं, आपसे भी भजन करता है, वो दिन रात रोता है और कुछ नहीं खाता
और सनातन नाम लेकर रोते
हैं, और सनातन नाम लेकर के रोते हैं। उसी समय में सनातन गोस्वामी देखने गए, देख करके अपने साथ वृंदावन में लाए और वो अपनी कुटी में रख करके और खुद गए रूप गोस्वामी से कहा, भाई जीवों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है साधुओं का, आप तो दया करनी चाहिए, तो तुम जीव गोस्वामी को छोड़ करके, जीव को छोड़ करके और दया नहीं करते हो। फिर वो बड़े दुखी हो गए, तो जीव गोस्वामी को लेकर के उनकी गोदी में जब बैठा दिया तो ये भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। फिर रूप गोस्वामी ने उनकी चिकित्सा कराई, फिर सब ठीक ठाक हो गया, फिर अपने ग्रंथों का सब भाग उन पर दे दिया, जितना करेक्शन करना और ये सब ग्रंथों का संग्रह उन्होंने किया। जी गोस्वामी ने ही हमारे रूप गोस्वामी की जितनी पुस्तकें हैं उनको लिखवाया हाथ से और उसका प्रकाश किया। चीरघाट हम लोग गए, चीरघाट को हम पार करके बसई में गए। बसई को, बसई बीच में है और इधर में जेई और सेई है, तो जेई सेई में हम लोग गए, वहां का बतलाया हमने। और बसई को कहते हैं बत्सबन, बत्सबन में हम लोग कल गए थे। उसको जब हम पार करके जब चले तो पड़ा परखम, परखम परखम माने क्या, परीक्षा से परखम। जब कृष्ण गए चरा रहे थे और अघासु का वध वही पासी में है सपौली गांव, जिसको परसौली कहते हैं आजकल, परसौली भी कहते हैं, परसौली माने परसौली, और परसौली माने फिर भी संपौल थोड़ा सा इधर उधर। परसौली इसलिए कहते हैं कि कृष्ण उसके मुख में पस गए, पस गए माने घुस गए, प्रवेश करने का नाम है प्रवेश से प्रवेश, तो ये परसौली हो गया। और सपौली किस लिए, यह अगासुर वहां था, अगासुर का वध किया इसलिए सपौली, और उसके मुख में घुस गया इसलिए पसौली। उसी के पास में यह परखम है, ब्रह्मा जी ने देखा वहीं पर पसौली में, अरे परखम में वहीं से देखा, सपौली पास ही एक मील के अंदर में है इसे, अरे इसके मुख में ये प्रवेश कर गए और उससे तेज निकला, उसके सिर को निकाल करके तोड़ करके सिर को फोड़ करके और कृष्ण निकल आए, और उसमें से उसका तेज निकला, कृष्ण के पैर में प्रवेश कर गया, उसको मुक्ति मिल गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने वहीं से परखम किया, अरे ये कौन है, वो नंद का लाला है न, ये परब्रह्म है, यदि परब्रह्म है तो इसकी कुछ लीला देखूं, इसलिए इसको बचनों को यहाँ से हटाऊं। इसलिए परखम माने विचार करके परीक्षा की, ये वही परब्रह्म है या क्या है, इसलिए इसका नाम हो गया परखम। पासी में चौमुहा है, चौमा ने? जब यहाँ पर परखम करके सब ठीक ठाक कर लिया और बछड़े सब निकल आए और जब अपनी ग्लानी हुई स्तव स्तुति किया ये चौमुहा में, इसलिए इनका नाम है चौमा। बच्चे करा रहे ये क्या, ये चौमा चौमा चौमा, वो उठ रहे गिर रहे थे और उनकी प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण एक बच्चे के हाथ पर बाएं हाथ दे करके दाहिने हाथ से लीलात्मक घुमा रहे थे, मन उनकी प्रार्थना ही सुन रही है। तो वो है परखम, पासी में चमोहा, पासी में एक मिनट के अंदर में परसौली या सपौली या सर पर स्थली, पासी में है शकर आयो, शकर रोआ, शकर रोआ, शकर रोया, शक माने शक्र जहां रोया, शकर रोया, शकर रोया, शकर माने इंद्र,
एखन नाम शकर आया,
अब शकर रोआ, रोआ शकर रोआ, तो शक जहां पर रोया वहां पर गोवर्धन ने जब उनकी, जब उन्होंने भगवान की ये देखा, भगवान ने उन पर कृपा विशेष नहीं की, उनको विशेष उसे प्रसन्न करने के लिए छठी करा के निकट आ गए जहाँ पर के कृष्ण वास करते थे, और इसी ग्राम में रह करके कृष्ण की आराधना करने लगे, इसलिए वहाँ पर रह करके रोते थे, आराधना करते थे, रोते रोते मंत्र जप करते थे, इसलिए सब रोया उनका नाम हो गया। जय जैत माने जब ब्रह्मा जी ने को जब उनकी प्रार्थना उतना की तो वहां पर देवता लोग भी आ गए और जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी, इसलिए जय से जय जय तो ये हो गया देवता। और पासी में फिर गरुड़ गोविंद हम आ गए। अब हम लोग का कुछ स्थान रह गया है, बहुत स्थान रह गया है, पूरा तो हम लोग गए नहीं, जो बीच बीच में बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से वृंदावन जब जाएंगे तो रास्ते में आएगा भातरोल आए, भातरोल आएगा, अपूर्व घाट आएगा, और फिर हम लोग अभी जाएंगे बेलबन, अभी गोवर्धन जाएंगे तो बीच में पड़ सकता है बहुत स्थान, शांतनु कुंड पड़ेगा, माधुरी कुंड पड़ेगा, पासी में पड़ेगा अड़िंग, राधा जी का मान अड़िंग है, दिखता नहीं है इसलिए अड़िंग है, और पासी में ये चंद्र सरोवर
पैठ
और पैठा, ये सब स्थान है, ये सब दर्शनीय स्थान है, कृष्ण लीला के स्थान है। तो ये सब का भी वर्णन हम लोग करेंगे पीछे। आज रात हो गई, आज यहीं तक रहे, फिर दूसरे दिन सब का वर्णन करेंगे। आप लोग अभी बतलाया 16 तारीख को हम लोग चलेंगे गोवर्धन। हमारे समय से सबको चलना चाहिए, एक दिन का मामला है। सब परिक्रमा करके भी नहीं, जिसकी परिक्रमा कुछ नहीं हुई और गिरिराज की परिक्रमा कर दी तो सबकी परिक्रमा हो जाएगी। 84 कोस की परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा से ही हो जाएगी। उस दिन सब लोग चलेंगे, हमको नाम लिखवा देंगे इन लोगों के पास में। ये कौन कौन चलेंगे? जिसका नाम लिखा है वो तो है ही है, बाकी जिनका नाम नहीं लिखा है वो सबको बतला देंगे। जरूरत होगी तो और बस मैं कर दूंगा, हमारे साथ में वो बस जाएगी और साथ ही में वो शाम को लौट करके आएगी। कुछ पैसे अधिक होंगे किंतु निश्चित रूप में रहेगा जो हमारे साथ में चलेंगे और वहाँ से आने में भी साथ हम लोग रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक 200 आदमी 300 आदमी भी चल सकते हैं।